नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये है पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक खास उद्बोधन। शीर्षक है, अनुदान की तीन शर्तें, तीन कसौटियां। इसमें पूज्य गुरुदेव ने पुरुषार्थ, मतलब जो हम अपनी मेहनत करते हैं, उससे आगे बढ़कर एक विशेष दैवीय सहायता, जिसे वो अनुदान कहते हैं, उसे पाने का रास्ता बताया है।
हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से ही सब होता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव बताते हैं, और इतिहास भी गवाह है, कि पुरुषार्थ की एक सीमा है। जो असाधारण सफलताएं होती है ना, उनके पीछे कई बार कोई खास कृपा, कोई दैवी अनुदान काम करता है। जैसे महाभारत में देखिए, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, उनका मार्गदर्शन मिला, या फिर हनुमान जी को श्री राम से जो शक्ति मिली वो अद्भुत थी। ये सिर्फ पुरुषार्थ नहीं था।
अच्छा, तो ये अनुदान फिर है क्या चीज? मतलब इसे थोड़ा और समझाएंगे, और क्या ये किसी को भी मिल सकता है? पूज्य गुरुदेव इसे कैसे देखते हैं?
हाँ देखिए, पूज्य गुरुदेव इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये अनुदान कोई व्यक्तिगत ऐशो आराम के लिए नहीं है, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये हमेशा मिलता है किसी ऊंचे मकसद के लिए, किसी बड़े काम के लिए, लोक कल्याण के लिए। उन्होंने उदाहरण भी दिया, जैसे सुदामा को कृष्ण ने मदद दी तो वो निजी ऐश के लिए नहीं थी, वो गुरुकुल चलाने के लिए थी, एक सामाजिक काम के लिए। इसी तरह जैसे गांधी जी ने विनोबा भावे जी को, सरदार पटेल जी को पहचाना, उन्हें आगे बढ़ाया, वो भी एक तरह का अनुदान ही है, पात्रता देखकर मिलता है। पूज्य गुरुदेव तो अपने जीवन के जो इतने सारे बड़े काम थे, उनका आधार इसी दैवीय अनुदान को मानते थे।
हाँ, और एक बात यहाँ समझना जरूरी है ना, कि यहाँ भगवान का मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं है।
सही कहा, बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव के अनुसार भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक सिद्धांत है, एक नियम, एक अनुशासन, एक मर्यादा। जैसे प्रकृति के नियम है ना, सबके लिए बराबर, वैसे ही ये आध्यात्मिक अनुदान का नियम है। ये पात्रता पर टिका है, इसमें कोई पर्सनल फेवरेटिज्म या रियायत की गुंजाइश नहीं है। ये तो एक तरह से साइंटिफिक है, आप शर्तें पूरी करेंगे तो फल मिलेगा।
तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये जो अनमोल दैवीय अनुदान है, इसे पाने के लिए वो पात्रता, वो योग्यता कैसे लाएं? पूज्य गुरुदेव ने इसकी कसौटियां क्या बताई हैं?
हाँ, उन्होंने पात्रता बढ़ाने के लिए तीन सीढ़ियां बताई हैं, तीन कसौटियां। पहली है उपासना। अब उपासना का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं समझ लेना है, इसका गहरा मतलब है ईश्वर के पास बैठना, यानी उसके जो गुण हैं, जो सिद्धांत हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारना, कोशिश करना, ईश्वर के प्रति एक गहरी श्रद्धा, एक समर्पण का भाव, अपनी इच्छाएं थोपना नहीं, बल्कि उसकी जो इच्छा है, उसका जो विधान है, उसमें अपनी इच्छा मिला देना। जैसे गुरुदेव कहते थे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही दूर रहे।
यानी उपासना खुद को ईश्वर के गुणों के साथ, उसके सिद्धांतों के साथ अलाइन करना है। अच्छा, और इसके बाद दूसरा कदम क्या है?
दूसरा कदम है साधना। साधना का मतलब है खुद को साधना, आत्म परिष्कार, अपने आप को बेहतर बनाना। इसमें खास तौर पर तीन चीजें आती हैं, हमारी आदतें, हमारी मान्यताएं और हमारी आकांक्षाएं, यानी इच्छाएं। इन तीनों को नीचे के स्तर से उठाकर ऊंचे स्तर पर ले जाना। अपने अंदर जो कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, जिसे पूज्य गुरुदेव घटियापन कहते थे, उससे लड़ना लगातार। वो एक उदाहरण देते थे ऊंचाई का, जैसे जमीन पर गाड़ी धीमी चलती है, पर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, विमान या सैटेलाइट, उनकी गति बहुत तेज हो जाती है। वैसे ही जब व्यक्तित्व को हम साफ करते हैं, ऊंचा उठाते हैं, तो दैवीय कृपा को खींचने की ताकत बढ़ जाती है।
और तीसरी कसौटी, उपासना और साधना तो जैसे आपने बताया ज्यादातर खुद पर काम करने जैसी है।
हाँ, तीसरी कसौटी है आराधना। आराधना का मतलब है लोक सेवा, जन कल्याण के काम, ये जो ईश्वर की दुनिया है, इसे और सुंदर और बेहतर बनाने के लिए अपना कुछ हिस्सा लगाना, अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी योग्यता, अपने साधन, जो भी है उसका एक अंश, उदारता दिखाना, करुणा रखना, दूसरों की मदद करना, सेवा करना, ये सब आराधना है। तो जहां उपासना और साधना खुद को सुधारने के लिए है, वहीं आराधना ईश्वर के काम में हाथ बटाकर, यूं कहिए, उसे प्रसन्न करने का तरीका है, दुनिया की निस्वार्थ सेवा।
अच्छा, तो ये तीनों बातें साफ हुई, उपासना, साधना और आराधना, ये है वो कसौटियां। लेकिन मान लीजिए कोई इन पर खरा उतरता है, तो उसे मिलता क्या है, इसके फायदे क्या है, मतलब प्रैक्टिकल लाभ?
हाँ, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जब ये पात्रता आ जाती है और वो दैवीय अनुदान मिलता है, तो व्यक्ति को एक विशेष प्राण धारा मिलती है, जीवन ऊर्जा कह सकते हैं, और इस प्राण धारा के मुख्य रूप से तीन फायदे साफ दिखते हैं। पहला है जीवनी शक्ति का बढ़ जाना, बहुत ज्यादा, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती, बीमारियों से लड़ने की गजब की ताकत, लंबी उम्र। पूज्य गुरुदेव खुद अपनी इतनी उम्र में भी जवानों जैसा काम करते थे, जितनी ऊर्जा थी उनमें वो इसी प्राणधारा का असर बताते थे।
जीवनी शक्ति, ठीक है, इसके अलावा और क्या?
दूसरा लाभ है साहसिकता, पर ये वो वाली हिम्मत नहीं जो गलत कामों में दिखती है। यह श्रेष्ठ कामों को करने के लिए जो चाहिए होता है ना, वो हिम्मत, वो संकल्प, वो दृढ़ता, जैसे नेपोलियन का साहस था या कोलंबस का। बड़ी बड़ी रुकावटों के बाद भी वो असंभव से लगने वाले काम कर गए। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये बुरे कामों के दुस्साहस से एकदम अलग है। ये अच्छे मकसदों के लिए जोखिम उठाने की, संघर्ष करने की अंदरूनी ताकत है। ये उसी अनुदान से आती है।
और तीसरा लाभ?
तीसरा लाभ है प्रतिभा। प्रतिभा यानी एक ऐसी खास क्षमता जिससे इंसान दूसरों पर बहुत गहरा पॉजिटिव असर डालता है। लोग अपने आप उसकी बात मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, जैसे महात्मा गांधी का प्रभाव था या भगवान बुद्ध का। करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी उन्होंने। ये एक किस्म का, आप कह सकती हैं, चुंबकीय आकर्षण है, लीडरशिप क्वालिटी है, समाज को सही दिशा में ले जाने की ताकत है।
तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में देखें तो पूज्य गुरुदेव का संदेश ये है कि भाई, अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ जरूरी है, पर उसकी एक हद है। जिंदगी में अगर कुछ असाधारण करना है, बड़े लक्ष्य पाने हैं, तो दैवीय अनुदान की जरूरत पड़ सकती है। और ये अनुदान कोई लॉटरी नहीं है, ये उपासना, साधना और आराधना की कसौटियों पर खुद को खरा उतार कर पात्रता हासिल करने से मिलता है।
बिल्कुल सही कहा। और सबसे जरूरी बात ये कि ये पात्रता सिर्फ बाहर के पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं आती, या सिर्फ अपने फायदे के सोचने से नहीं आती। ये आती है अपने अंदर सुधार करने से, खुद को बेहतर बनाने से, और बिना किसी स्वार्थ के दुनिया की सेवा करने से। ये तो पूरे व्यक्तित्व को बदलने का और ईश्वर के सिद्धांतों के सामने झुकने का रास्ता है।
पूज्य गुरुदेव का ये भी मानना था कि अभी का जो समय है वो ऐसे अनुदान पाने के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण है, अनुकूल है। तो ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के जमाने में इन तीन कसौटियों पर चलकर, उपासना, साधना और आराधना, हम किस तरह की दैवीय मदद महसूस कर सकते हैं, और इसका असर हमारी अपनी जिंदगी पर, हमारे समाज पर, इस दुनिया पर क्या हो सकता है, कैसा बदलाव आ सकता है, इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।